सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बहुत करीब आ पहुंचा है और सप्ताह में एक दिन ही मैंने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी से संबंधित विषय पर चर्चा करने की बात कही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग फिलहाल कंप्रिहेंशन पर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि चूंकि अब एग्जामिनेशन बहुत निकट आ चुके हैं, तो कम से कम कंप्रिहेंशन वाले पोर्शन को तो जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए और हमें अगले वेडनेसडे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रख करके आज मैं आप सबसे मुख्य विषय के अंतर्गत सीधे सीधे एक परिच्छेद पर बात करने जा रहा हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मुझे पूरा यकीन है कि इससे संबंधित जो शब्दावलियां होती हैं, जो प्रश्न में शामिल होते हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट भी ये की थी कि आप सब इन शब्दावलियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं परिच्छेद के तहत, उन्हें हल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप सब ने ऐसा किया होगा, और अगर नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, आइए अब आप मेरे साथ ऐसा करें। मैं जिस पेपर को लेकर के चल रहा हूं, ये लेटेस्ट है, पिछले साल अक्टूबर में 2020 में जो एग्जाम हुआ था उससे मैंने लिया है, और मेरे पास पेपर का जो सेट है वह डी सेट है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम। डी सेट है और मैं जिस प्रश्न की चर्चा करने जा रहा हूं वह प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है। पहले मैं परिच्छेद पढ़ूंगा, परिच्छेद के बाद फिर जो उससे जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सामने रखूंगा, और इसके बाद फिर हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे सही उत्तर तक पहुंचा जाए। तो पहले परिच्छेद है और परिच्छेद को आप ध्यान से सुनेंगे, और बेहतर होगा कि यदि आपके पास यह प्रश्न पत्र हो तो आप इस प्रश्न को निकाल लें, और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे आप अपनी आंखों को भी इसकी यात्रा कराते चलें, उससे और बेहतर स्थिति में आप अपने आप को पा सकेंगे। तो दोस्तों, आइए परिच्छेद देखते हैं। भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टतः बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं। सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही हैं, जिनकी देश को आवश्यकता है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमतापूर्वक भर सकते हैं। ये छोटा सा अंश है, बहुत ही छोटा सा अंश, और मैं समझता हूं कि जो अनुवाद भी किया गया है वो काफी कुछ ठीक ठाक है। शायद ही आपको इसमें कोई ऐसा शब्द मिला होगा जो जिसे समझने में आपको दिक्कत हो। हाँ, जो 24 मिलियन नौकरियों की बात कही गई, तो हो सकता है कि मिलियन को लेकर के आप थोड़े से भ्रम में हो। 10 लाख का एक मिलियन होता है, तो जो 24 मिलियन है इसे आप करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.4 करोड़। बाकी तो सब बहुत ही आसान सा है। अब आप देखिए कि प्रश्न इससे क्या पूछा गया है। प्रश्न है, परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। निहितार्थ यानी कि एम्प्लाइड, IMPLIED, निहितार्थ, निहित अर्थ। उसी के आगे बोल्ड अक्षरों में देखिए लिखा हुआ है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अगर वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है हुआ कि जो नीचे विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हो सकता है कि दूसरे विकल्प भी सही हों। याद रखिए, यहां सही और गलत की बात नहीं कही जा रही है, नहीं पूछी जा रही है। यहां पूछा है आपसे ये जा रहा है कि इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। मेरी समझ से बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। हो सकता है कि ए भी इसी के तहत आता हो, उसमें उसका भी निहितार्थ हो, उसमें भी निहितार्थ हो, सी में भी निहितार्थ हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है ए और सी में, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि परिच्छेद को हल करते समय मैंने देखा है कि स्टूडेंट जनरली इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। थोड़े से इमोशनली चार्ज रहते हैं, समय का दबाव भी दिमाग पर होता है, तो उन्हें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं लगती और फट से निशान लगा देते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निशान लगाते हैं कि इसमें तो गलत होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से गलत हो जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ बेस्ट इंप्लाइड, जो विकल्प है उन्हें देखें। ए, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवसन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। बी, निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। सी, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। डी, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। ये चार विकल्प हैं। आइए अब इन चार विकल्पों को थोड़ा सा अलग अलग करके देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो डायरेक्शंस क्रिएट हो सके कि कहां कहां से आप सही उत्तर की तलाश कर सकते हैं। देखिए, पहला उन्होंने दिया कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवसन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जब हम इस परिच्छेद को पढ़ रहे थे तो इसकी कहीं चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा परिच्छेद है, अगर आप ध्यान देंगे तो वह केवल रोजगार के ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, माइग्रेशन के ऊपर नहीं है कि कहीं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेशन की बात कही जा रही हो। कहीं भी आपको इस तरह की बात पढ़ने को नहीं मिलती, इसलिए इसे तो आप बड़े आसानी से आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं भी बताता तब भी आप इसे रिजेक्ट कर देते, ये इतना आसान सा है। जो दूसरा है वह निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर पेपर आपके सामने होगा तो आप उसकी दूसरी लाइन देखिए, जो परिच्छेद है उसमें दिया है, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि रोजगार के बेहतर अवसर नहीं है, वहां जा रहे हैं जहां रोजगार के बेहतर अवसर नहीं है वहां जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि यहां आपको फंसाने की कितनी कोशिश की गई है। और बी में क्या विकल्प दे दिया गया है कि निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। डेफिनेटली लाना चाहिए, ओपिनियन की दृष्टि से बिल्कुल सही है। और इस तरह की लाइन यहां कुछ मिलती भी है, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप उसे फिर से पढ़िएगा कि बेहतर रोजगार के अवसर नहीं है। लेकिन क्या यह है? क्योंकि जब ये कहा जा रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ, तो याद रखिए वो किसी एक पंक्ति से संबंधित नहीं है, पूरे के पूरे परिच्छेद से इसका संबंध है। पूरे परिच्छेद से क्या निकल कर बाहर आ रहा है, और वो भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो पहले विकल्प की तुलना में ये दूसरा विकल्प थोड़ा ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन दिमाग पर आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आप इसे भी रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, ये लग नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, आप अपने दिमाग में रख लीजिए और दूसरे विकल्पों पर आइए, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते, कहीं उनमें न छिपा हुआ हो। नेक्स्ट है, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। देखिए, इसके बारे में भी यहां लिखा हुआ है, सेवाएं जो शब्द है, आप उसके लाइन पर जाइए जो दूसरी लाइन शुरू होती है, जो दूसरी पंक्ति की, सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही है। यहां दे रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहां जो सी विकल्प दिया है वो है बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। तो पहली बात तो यह है कि कंट्राडिक्शन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज की दृष्टि से जाएंगे तो सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है हमारा जहां लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि यहां परिच्छेद से संबंधित है, इसका संबंध है, तो सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है, इसके देखेंगे कि कोई संबंध इससे नहीं है जो परिच्छेद में कहा गया है उससे। सर्विस सेक्टर के बारे में उल्लेख है, लेकिन सीधे सीधे ये बात नहीं कही गई है। फिर निहितार्थ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि ये उल्टी बात कही जा रही है। तो आप सी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जिस स्टूडेंट से मुझे यह पेपर मिला है डी, उसने सी पर ही निशान लगाया है, उसने सी सही किया है। देखिए कि कैसे उलझ जाते हैं, क्योंकि उलझाने की कोशिश की जाती है, है ना। ये तो जैसे फुटबॉल आप लेकर के अगर गोल मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो जो अपोनेंट, जो दूसरी टीम है सामने वाली, वो क्या करेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी और आप छकाने की कोशिश करेंगे। तो ये लगभग लगभग वही चीज है। इसके बाद है डी, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। देखिए यहां शब्द जो प्रयोग किया गया है वह है सामाजिक क्षेत्र। अंतिम लाइन क्या है, केवल वे सेक्टर, परिच्छेद की अंतिम लाइन, केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये कौन से क्षेत्र है? देखिए विकल्प में स्वास्थ्य और शिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां सामाजिक क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा है ये कौन सा क्षेत्र है? ये सामाजिक क्षेत्र है। शिक्षा में बहुत ज्यादा बेरोजगार, आप शिक्षा में आप ढेर सारे रोजगार आप उपलब्ध करा सकते हैं, टीचिंग का और दुनिया भर का। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी ऐसे ही, हॉस्पिटल खोलिए, नर्सें चाहिए, दूसरे सपोर्ट, दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, बहुत से लोगों की जरूरत है। तो यहां सामाजिक क्षेत्र कह के थोड़ा सा दबे स्वर में आप यूं कह लीजिए कि आपकी ओर इशारा किया गया है। अब हमारे सामने ये चार विकल्प है, चार विकल्प में एक दो विकल्प हमें बिल्कुल सही नहीं मालूम पड़ते हैं। जो चैलेंज जो मुझे दिखाई देता है वो बी और डी में दिखाई देता है, लेकिन जब बी और डी पर भी आप विचार करेंगे और इसमें से बेहतर को छांटने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, डी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो समस्या है परिच्छेद की वह मूलतः रोजगार की समस्या है और अंत में ये बात कही भी गई है, तो यदि हम इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दें तो बात बन जाएगी। तो जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए फ्रेंड्स डी। तो यह मैंने एक प्रश्न आपके सामने रखा है और उसका हल सुझाया है, तो हो सकता है कि इससे आपको थोड़ी सी अंतर्दृष्टि मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। अपना ख्याल रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।